ओम शांति। आज हमारे बीच आदरणीय सरलाबेन पधारे हैं, भट्टे की विशेष आपकी क्लास करा दें और उसमें भी विषय है मनोबल और मनसा सेवा। बहुत सूक्ष्म विषय पर अनुभव युक्त क्लास कराएंगे। आप करीब 45 सालों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो। शुरू में यहीं मधुबन यज्ञ में सेवाएं देते हुए, दिल्ली की सेवा करते हुए, फिर उत्तर गुजरात की सेवा, विशेष मेहसाणा सब जोन के कई सेवा केंद्र और पाठशालाएं, 25-30 सेवा केंद्र है और 400 जितनी गीता पाठशालाएं हैं जिसका आप कुशल संचालन करते हो। आप कुशल प्रशासक हो तो प्रभावशाली वक्ता भी हो। कई प्रकार की भट्टियां होती है बेहद यज्ञ में, नीचे ऊपर, और सारे भारत में भी कई स्थानों पर आप भट्टियों के लिए भी जाते हो। तो ग्राम विकास के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हो तो उस प्रोग्राम के लिए भी भारत के अनेक स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर आपने काफी सेवाएं प्रदान की है। आप त्याग तपस्या और सेवा की चैतन्य मूर्ति हो और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हो। आपके लिए यही कहूंगी कि आपने सदा कार्यों की जलाई है मशाल, आपकी कार्य शक्ति है कमाल। तो इस प्रकार के अनुभवी बाबा के विशेष रत्न का आज हम एक ताली के आदर से स्वागत करते हैं और अभी हम आपका गुह्य अनुभव युक्त क्लास सुनेंगे। आदरणीय सरलाबेन जी,
ओम शांति। आज सत गुरुवार, जबकि श्रेष्ठ मनोबल की धनी मनसा सेवा की प्रखर अनुभवी हमारी परम श्रद्धे आदरणीय दीदी जी का भी भोग था। ऐसे विशेष दिन पर आप सभी बाबा के गुवाहाटी निवासी बच्चे एक श्रेष्ठ लगन और तपस्या में मगन होकर के अनेक अनुभव करते, अपनी वृत्ति को शक्तिशाली बनाते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करने के एक श्रेष्ठ संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सभी भाई बहनों का खूब खूब दिल से अभिवादन और अभिनंदन करती हूं। सचमुच जब हम अपने इस ब्राह्मण जीवन को देखते हैं और ब्राह्मण परिवार को देखते हैं, उससे एक अलौकिक प्राप्ति और अनुभूति होती है। होता है जब परिवार को देखते हैं तो ऐसा श्रेष्ठ परिवार दुनिया में कहां होगा? नहीं है। और उस परिवार का मेंबर बनने का सद्भाग्य हम आत्माओं को प्राप्त है ना? तो हम बाबा के वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको बाबा ने करोड़ों में से चुना है, इसलिए विशेष है। और उन विशेष बच्चों को सारी दुनिया के अंदर धन दान, वस्त्र दान, अन्न दान, अनेक प्रकार की सेवाएं अनेक संस्थाएं कर रही हैं। कथाकार कथा कर रहे हैं। धर्म धार्मिक भावनाएं समाज में पैदा कर रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ मनसा के द्वारा इस तमोगुणी दुनिया के अंदर उन तमोगुणी वातावरण में रहने वाले हमारे ही बहन भाई, उनको सतो प्रधान बनाने की महान सेवा वो बाबा ने हम बच्चों को सौंपी है। दुनिया में कोई मनसा सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर आपको याद हो तो एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने यहां तक कहा था, बच्चे तुमको इस भ्रष्टाचार को मिटाना है। किस आधार से? इसी मनसा के बल से। क्योंकि भ्रष्टाचारियों को मालूम है हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए वो भी मालूम है, फिर भी कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मनोबल नहीं है और वो मनोबल हम बच्चों को प्राप्त है। उस प्राप्ति का आधार बाबा की 179 की अव्यक्त मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा कि मनसा सेवा का सहज साधन है, एक ही शब्द था, अटूट निश्चय। अटूट निश्चय बुद्धि आत्माएं, जिससे एक शक्तिशाली वायुमंडल बनता है और उस वायुमंडल का प्रभाव आत्माओं पर पड़ता है। बाबा ने कहा उन आत्माओं को आपसे ऐसे महसूस होगा कि ये हमारे से न्यारे हैं, इनके पास कुछ है, इसलिए खींच करके आपके पास आएंगे। अब हम अपने आप को चेक करें, हम सब बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि तो हैं, निश्चय बुद्धि है ना, तब तो यहां तक भट्टी के लिए पहुंचे बाबा के घर और इतना वर्षों से जो भी चल रहे हैं। लेकिन बाबा का जो निश्चय था, बाबा तो अटूट निश्चय था ना, बाबा के निश्चय और हमारे निश्चय में कोई अंतर है? हमारा निश्चय बाबा जैसा है? है? नहीं है। अब वो अंतर क्या है, सिर्फ उसको समझना है, और जब ये अंतर मिटेगा तब ही निरंतर बाबा की याद रहेगी, मनसा शक्तिशाली बनेगी और वायुमंडल बदलेगा। क्योंकि बाबा हम सबके सामने आज हमारी दादियां हैं, ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है मनसा सेवा के। तो अटूट निश्चय किसको कहेंगे? बाबा आया हुआ है, हम सबको निश्चय है। बाबा जो ज्ञान सुना रहा है उसमें भी हमें निश्चय है, तो अटूट क्यों नहीं है? टूटता कहां है निश्चय? हमारा निश्चय कहां टूटता है? टूटता है। बाबा ने जो भी शिव बाबा ने बाबा को कहा, उसको बाबा ने यथार्थ रीति से अपने जीवन में अपनाया। जैसे मैं आत्मा हूं, ठीक है, हम सब जानते हैं हम आत्मा हैं, हम आत्मा कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन चलने में अटूट नहीं है। ये अभ्यास हमारा अटूट अर्थात निरंतर नहीं है, बार बार हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, हम पुराने स्वभाव संस्कार के वश हो जाते हैं, आत्मा मालिक की जगह गुलाम बन जाती है, और गुलाम कभी भी बाबा से शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता है, पहले तो मालिकपन का अनुभव नहीं करेगा। ये है हमारे प्रैक्टिकल में अंतर आता है, जो निश्चय टूटता शब्द नहीं कह सकते हैं, लेकिन अटूट नहीं रहता है। और ये जो पुराने स्वभाव संस्कार वार करते हैं, उससे मनसा में कई प्रकार की विकृति और उस विकृति का मनसा के ऊपर बोझ, तो बोझिल आत्मा ये सोचे कि मैं मनसा दान दूं, दे सकेंगे? नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो फर्स्ट लेसन है आत्मा का, इस आत्मा के पाठ को हमें कूट कूट करके पक्का करना है। मुझे दादी चंद्रमणि का एक मिसाल याद आता है। एक बार हम लोग को ऐसे मिल रही थी, तब दादी ने कहा, दादी टिक्कन हृदय पुष्पा दादी, कहा शुरू शुरू में बाबा ने आत्मा का ऐसा अभ्यास कराया, लिख करके अभ्यास कराया, जब किसको देखो तो पहले आत्मा देखो, फिर उसके साथ बात करो, आत्मा आत्मा सुबह से लेकर बोली रात तक आत्मा आत्मा करके, फिर हंसते हुए कहती है बाबा ने आत्मा की चटनी बना दी। चटनी सबसे महीन होती है ना। हम अपने आप से पूछे, हमने चटनी बनाई है? प्रवृत्ति में है, कर्म क्षेत्र पर है, तो कर्म करते हुए ये स्मृति रहे, करावनहार करा रहा है, करनहार कर रहा हूं, ये है मालिकपन की स्थिति। करावनहार करनहार कर रहा है। हम बार बार क्या कहते हैं, मैंने किया। ये जब तक मैं है तब तक मनसा शुद्ध और शक्तिशाली नहीं हो सकती। तो पहला अभ्यास आत्मा का इतना बाबा का पक्का था, और उस आत्मा के पक्के होने से बाबा को हर आत्मा के प्रति इतना प्यार था, ये मेरा बच्चा है। कमी कमजोरी बाबा देखता था, जानता था, सुनता था, लेकिन बाबा का ध्यान किस पर जाता था? आत्मा पर जाता था। मेरा है। हम जब कमी और कमजोरी को देखते हैं, आत्मा दिखाई देता है नहीं, तो कमजोरी का प्रभाव पड़ता है। क्यों किया? ज्ञानी होते हुए किया, नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना। तो मनसा में आत्मिक दृष्टि और दृष्टि, ये कर्म में आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते करते मनसा वृत्ति इतनी श्रेष्ठ बनी, जो हर आत्मा के प्रति आत्मिक भाव ऑटोमेटिक हो गया बाबा का, आत्मिक दृष्टि बनी। जिस आत्मिक दृष्टि के कारण से कभी भी किसी परिस्थिति ने बाबा को विचलित नहीं किया, इतना बाबा का मनोबल दृढ़ रहा, जबकि उस समय पर बाबा के सामने तो दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं था ना, बाबा अकेला था, शिव बाबा उसमें था, संगठन हमारे जैसा आज जैसा नहीं था। तब बाबा ने लोगों के विरोध को मनोबल की दृढ़ता से सहज बाबा सामना कर सका, क्योंकि अटूट निश्चय के कारण से बाबा हमेशा निश्चिंत रहा। जिसको बाबा कहते थे निश्चय बुद्धि विजयंती, कोई भी परिस्थिति है, बाबा को इतना पक्का विश्वास था, भले सामने में लोग गालियां दे रहे हैं, न्यूज़पेपर के अंदर बाबा के अपमान के शब्द लिखे हुए हैं, बाबा के कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। बाबा क्या कहता था? नथिंग न्यू, बेसमझ है। जब समझ लेंगे तो बाबा को ऐसा नहीं कहेंगे। इतना बाबा का मनोबल दृढ़ था। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इंप्रेशन क्या होगी, कभी सोचा बाबा ने? नहीं। जो हुआ था वो हो रहा है, निश्चित विजय हमारी है। हर कर्म में, हर परिस्थिति में बाबा का अटूट निश्चय कार्य करता रहा, और उस अटूट निश्चय के आधार पर लोगों का सामना कर लिया बाबा ने। लेकिन बाबा की आंतरिक वृत्ति नहीं बदली। अभी समझिए, आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, ठीक है, आप समझते हो नहीं करना चाहिए लेकिन किया, आप अपने को चेक करना, वृत्ति बदलती है? फौरन बदलती है। हम रिएक्ट कर होते हैं, फट से होते हैं, दिखाई देता है कि हम रिएक्ट कर रहे हैं। जब तक हमारी ये सूक्ष्म वृत्ति प्रैक्टिकल में नहीं बदलती है, और इसको बदलने के लिए हमें बहुत दृढ़ता संपन्न पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बाबा ने अभ्यास किया, केवल सुना समझा नहीं, घोटा बाबा ने एक एक बात को। आत्मा हूं, आत्मा हूं, जशोदा आत्मा, फलाना आत्मा, ऐसे किया। देखने में बाबा ने आत्मा देख रहा हूं, आत्मा से बात कर रहा हूं, चिंतन में बाबा ने आत्माओं को देखा। इसलिए पहला पाठ, अगर हमें मनसा सेवा करनी है तो अभ्यास के द्वारा, आत्मिक चिंतन मनन के द्वारा अपनी वृत्ति को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना है। मैं शुद्ध, समर्थ, श्रेष्ठ आत्मा हूं, ठीक है। दूसरी बात, बाबा से जो ज्ञान मिला, जिस ज्ञान से परिपक्वता आई, आज हम सबके पास में ज्ञान है। कल हम लोग बात कर रहे थे, दादी भी बोल रही थी, पहले क्या था, हर चीज को बोली हम लोग मनन चिंतन मंथन से निकालते थे। बाबा भी कहता था जाओ एकांत में जाकर के मनन चिंतन करो। अभी क्या है, इतने सारे साधन है। मैं कल मुरली में देख रही थी, कुछ थे भाई हमारे, हाथ में मोबाइल था, मुरली आती है ना, इधर दादी मुरली पढ़ रही थी, वो मोबाइल के साथ में टैली कर रहा था, या अब उसमें पढ़ रहा है, वो फुल अटेंशन होगा। आपका क्लास यहां चला, फट से व्हाट्सएप पर हमने बाहर भेज दिया, सीडी हमें मिल गई। अब हम साधनों के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन साधनों को साधना का आधार नहीं बना रहे हैं, समझ रहे हैं? साधन तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमने सीडी सुन लिया, सुनने के बाद में क्या आता है, अगर कोई आपको वो बात बताता है तो हम ये कहते, ये तो मैं जानता हूं, हमने सूरज भाई की क्लास में सुनी थी, ये मैं जानता हूं, हमने दादी के क्लास में सुनी थी। जानने का मतलब क्या है? जाना बाबा ने। जानने का मतलब होता है हम उस बात के अनुभवी बने, तब हमने जाना। अब समय की पुकार है, यज्ञ को आवश्यकता है, और बाबा की हम बच्चों के प्रति आश है कि ये मेरे बच्चे अपनी मनसा शक्ति को इतना श्रेष्ठ और समर्थ बनाए जिससे ये वायुमंडल परिवर्तन हो। तो दूसरा हमें क्या करना है, केवल ज्ञान को सुनना और समझना नहीं है लेकिन उसको व्यवहार में यूज करके संस्कार रूप में परिवर्तन करना है, तभी तो फायदा होगा ना। ज्ञान है ही संस्कार परिवर्तन के लिए। कई बार हमारे भाई बहने ज्ञान में बड़ा अच्छा चल रहे हैं लेकिन पुराने संस्कार जो है वो ज्ञान की चादर के नीचे ढके हुए हैं। परिस्थिति आई, चादर उड़ गई, पुराने संस्कार बाहर आ गए। क्यों ऐसा, मैं ऐसा और संघर्ष। तो ये तू और मैं क्यों हुआ, क्योंकि हमारा संस्कार नहीं बदला था, संस्कार अंदर ही पड़ा हुआ था। तो मनसा के लिए हमें नॉलेज के आधार पर संस्कार परिवर्तन करना है और उसमें भी जो बाबा ने ये आप और बाप हुआ जो ड्रामा का हम बच्चों को ज्ञान दिया है उस ड्रामा को घोट घोट करके कूट कूट करके पक्का करना है। ये सेफ्टी के लिए या संकल्प विकल्पों को रोकने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है ड्रामा। कई बार क्योंकि ड्रामा को बाबा कहता है बच्चे स्वदर्शन चक्र है, तो स्वदर्शन चक्र फिर आएंगे तो क्या होगा, माया का गला कट जाएगा। अब स्वदर्शन की चक्र की जगह आप इसको उल्टा घुमाना शुरू करो तो क्या होगा, खुद का गला कट जाएगा। ड्रामा एक ऐसी गोली है, जैसे नहीं कई बार कहती भाई ये गोली ये टेबलेट आपको रात को सोते समय लेनी है क्योंकि अच्छी नींद आएगी तो सुबह आप फ्रेश उठेंगे। अब उस टेबलेट को आप दोपहर को 11 बजे लो तो क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि समय चेंज हो गया ना। तो इसी रीति से ड्रामा को जब जहां और जैसे यूज करना है वहां की जगह अगर हम दूसरी जगह उसको यूज करते हैं तो उससे ये हमारी सेफ्टी का साधन नहीं है, हमें नुकसान होता है। क्या क्यों कैसे बड़ी लंबी उसकी क्यों बन जाती है। पूछो अपने आप को, आज अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं, नहीं लगता है, फट से क्वेश्चन मार्क आता है, बाबा को कैरेक्टर को ब्लेम कर दिया तो भी बाबा निश्चिंत रहा, बाबा के सामने इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ गई, बच्चे भूखे बैठे हैं, खाने के लिए नहीं है, तो भी बाबा निश्चिंत रहा। ड्रामा कल्याणकारी है, उसका काम है, उसके बच्चे हैं। किसी भी परिस्थिति में बाबा विचलित नहीं हुआ। आप सोचो, आपको अगर एक वर्ष बिजनेस में लॉस नहीं लेकिन नेक्स्ट लास्ट ईयर जो आपने कमाई की उससे इस वर्ष में कम इनकम हुई, सो चलेगा? लास्ट ईयर की भेंट में इस वर्ष में कम कमाई हुई तो सो चलेगा ना, चिंतन चलेगा ना, चलेगा। बाबा इतना निश्चिंत बैठा है, हमें चिंता हो जाती है अब क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, और बाबा के सामने में भूखे बैठे हुए हैं तो भी बाबा कहता है बच्चे वो खिलाएगा। और समय पर चेक आया, बाबा ने सामान मंगाया और बच्चों को खिलाया। ये किसकी विजय थी? निश्चय की। क्यों बाबा ने यज्ञ रचा, क्यों इतने सारे बच्चों को लाया, खाने के लिए नहीं है, कभी बाबा ने क्यों लगाया नहीं, निश्चय बुद्धि विजयंती, हमेशा बाबा ने ड्रामा को आगे रखा, बच्चे ड्रामा में कल्याण है, इसमें कुछ अच्छा होने वाला है। हम भी इस ड्रामा की ढाल को इतना मजबूत रखें, आने वाली कोई भी परिस्थिति, हर परिस्थिति के अंदर कल्याण समाया हुआ है, ये हम समझ करके एक सेकंड में ब्रेक लगाएं। किसको ब्रेक लगाएंगे? व्यर्थ संकल्प। अब इसको आप पढ़ाओ अपने आप को और अपने आप को चेक करो कि मुझे ये ब्रेक का ज्ञान तो है लेकिन ब्रेक लगाने में कितना समय जाता है। और कई बार ब्रेक की मालूम है फिर भी लगाते लगाते एक्सीडेंट कर दिया। फिर ऐसे निश्चय बुद्धि विजयंती, इसको बाबा अटूट निश्चय, हर परिस्थिति में हर कर्म में, लौकिक का पेपर आया तो भी बाबा निश्चिंत रहा, समाज का पेपर आया तो भी बाबा निश्चिंत रहा, उन सब पेपर से बाबा मुक्त हुआ, जब यहां आबू में पहुंचा, बच्चों के रहने और खाने का प्रश्न आया तो भी बाबा निश्चिंत रहा। अटूट निश्चय अर्थात निश्चिंत। निश्चिंत के साथ में दूसरा बाबा कहता है निश्चय की निशानी, वो है नशा। हमेशा बाबा को नशा रहा, मुझे कौन मिला है। आज भी बाबा की मुरली में बार बार आ रहा था, कितनी अच्छी मुरली थी। बाबा वंडर खा रहा है, बाबा कहता है बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा को नशा चढ़ा था, वाह रे मैं। हमें सोमान दिया जाता है, उस सोमान के लिए अभ्यास दिया जाता है तो थोड़ा समय के लिए लगेगा वाह रे मैं, लेकिन वाह रे मैं की स्थिति नहीं है। तो सोमान का अभ्यास अलग चीज है, अभ्यास है स्थिति को बनाने के लिए, अभ्यास स्थिति को बनाने के लिए है ना। लेकिन सोमान जो है, जैसे बाबा को सोमान था, सोमाना आत्मा, आत्मा है ना, और वाहरे मैं, उसको बाबा ने माना हुआ था, स्वीकार किया हुआ था कि ये वाहरे में मेरे जैसा कोई नहीं, वो नशा बाबा को चढ़ा हुआ था। तो नशा, और तीसरी बात निश्चित, हर बात में निश्चय की ये तीन निशानी, निश्चिंत, निश्चित और नशा, जो बाबा के जीवन में था। ऐसे इस ज्ञान का प्रयोग करते करते हम अपने फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाएं जिससे वाइब्रेशंस शक्तिशाली बन सके। मनसा सेवा के लिए बाबा ने कहा, एक स्थान पर बैठे चारों तरफ के वायुमंडल को तुम बदल सकते हो, यहाँ बैठे सामने वाले व्यक्ति से तुम बात कर सकते हो, जिसको बाबा ने एक शब्द दिया वायरलेस। वायरलेस होता है ना, यहाँ बैठे वायर नहीं है लेकिन वायरलेस, तो वहां आप बात कर सकते हो। ऐसे ही ये स्थिति हमारी तब आएगी, अटूट निश्चय के साथ दूसरी बात आती है संपूर्ण पवित्रता, आत्मा वाइसलेस हो, पांचों विकारों से, व्यर्थ और नेगेटिव से, क्योंकि ये भी तो नेगेटिविटी भी तो विकार है ना, इंप्यूरिटी है ना। जब वाइसलेस होगी तब परम पवित्र बाबा की शक्तियों को हम ग्रहण कर सकेंगे और वो शक्तियां चारों तरफ फूट फूट करके निकलेंगी। अब अगर इस बात को प्रैक्टिकल में जाकर के देखें, पवित्र बाबा के बच्चे सब हैं, क्योंकि बाबा ने भी हमें जन्मते ही ईश्वरीय जन्म लेते पहला वरदान कौन सा दिया, पवित्र बनो, फिर कहा योगी बनो, हर एक अपने से पूछे मेरी प्यूरिटी की परसेंटेज क्या है। इस ऊंची सेवा के लिए इतनी ऊंची प्यूरिटी चाहिए। काम को जीता आज भी बाबा की मुरली में था, कल भी बाबा की मुरली में था, बच्चे ये क्रिमिनलाइज नहीं जाती है। जिस दृष्टि में विकृति है, तो दृष्टि में कब आया, स्मृति से आया ना, तो उसकी स्मृति विकृत है। विकृत स्मृति और दृष्टि विकृत, मैं शाम को योग में बैठूं कि बस मैं आत्मा भी सारी सृष्टि को सकाश दे रहा हूं, दे सकेंगे? हां, संकल्प कर लेंगे लेकिन सकाश पहुंचेगा नहीं। सकाश पहुंचाने के लिए प्रकाश और शक्ति, ये दो चीज चाहिए, तभी सकाश दे सकते हो। प्रकाश अर्थात मैं आत्मा ज्योति बिंदु शक्तिशाली। काम को जीता लेकिन कामनाएं, बाबा कहता है कामनाएं सर्पणी के समान है। सर्पणी एक साथ में कितने बच्चे पैदा करती है, ऐसे कामना भी, एक कामना से हजार कामनाएं पैदा होती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं। तो अगर आत्मा में अभी वासना भी है, कामना भी है, इच्छा भी है, और वो आत्मा सोचे कि मैं मनसा सेवा करूं, कर सकेंगे? नहीं। तो पहले हमें अपने स्पिरिटी की पर्सनालिटी को बनाना, पर्सनालिटी अर्थात मेरा ऐसा व्यक्तित्व तो बन जाए, वो प्यूरिटी इस चेहरे से झलके। हजारों के बीच में आप खड़े हो, आपके कितने भी संबंधी हो, लेकिन उनको दिखाई दे कि ये हमारे से न्यारा है। सबसे श्रेष्ठ शक्ति पवित्रता की है। यही बल इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा रहा है। तो काम जीत, कामना जीत, क्योंकि क्रोध को, काम को अग्नि कहा ना बाबा ने, यह हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को भस्म कर देती है, बहुत सूक्ष्म है। आप समझ सकते हो मैं किसको किस दृष्टि से देख रहा हूं। ये इतना स्पष्ट सत्य का दरबार है, यहां कुछ भी नहीं छिप सकता बाबा से। मैं जो हूं, जैसी हूं, वो बाबा जानता है। अगर किसी पवित्र आत्मा के प्रति मेरी खराब दृष्टि गई, वो पवित्र आत्मा किसकी, शिव साजन की सजनी है, उसकी सजनी को अगर मैंने गलत दृष्टि से देखा तो महा 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 पाप है। और वो सूक्ष्म बोझा कभी भी आपको सूक्ष्म सर्विस नहीं करने देगा। भले हम सोचे किसको पता थोड़ा ही पड़ता है, बाबा ने प्यूरिटी की बहुत गहरी परिभाषा दी है। बाबा कहते हैं हंसना जोर से वो भी विकार है, बातें करते किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना वो भी विकार है, ये सारी कमजोरियां हैं। क्रोध, बाबा की कितनी मुरलियां क्रोध के ऊपर चल गई। एक सीजन में तो बाबा ने सबको हमें होमवर्क दिया, बच्चे क्रोध मुक्त होना है, नेक्स्ट ईयर जब बाबा आएगा तो सब बच्चों से चार्ट लेगा, प्रॉमिस करा लिए बाबा ने। हमने भी बाबा के आगे हाथ ऊंचे कर दिए, किए ना। फिर नेक्स्ट ईयर जहां थे, तो क्रोध भी इतना ही खतरनाक है, ये भी अग्नि है जो योग अग्नि को प्रज्वलित नहीं होने देगा। और अब अंत के समय में हम कोई गुस्सा करेंगे, गालियां देंगे, वो ब्राह्मणों की स्थिति नहीं है, अब तो हम उससे पार हो गए, लेकिन बाबा कहता है आवेश में आना, जोश में बोलना, ये भी क्रोध है। जोश और आवेश में भी हमारी शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। हम तो कहते हम गृहस्थ में हैं, हमने ऐसा किया तो क्या हुआ। जो बाबा ब्रह्मा का लक्ष्य था, बाप समान बनना, हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। भले आप गृहस्थी हो या प्रवृत्ति वाले हो, लक्ष्य आपका क्या है? बाप समान बनना है। तो पुरुषार्थ आपको कौन सा करना पड़ेगा? जो बाबा ने किया वो आपको भी करना पड़ेगा। वहां आप ये कह करके छूट नहीं सकते हो कि हम तो गृहस्थी हैं, हमसे तो ये भूले हो सकती हैं। नहीं, इतना स्ट्रिक आप अपने लिए बनो कि अब मेरे मुख से कोई भी साधारण हल्के बोल नहीं निकलने चाहिए। तप करो, बार बार चेक करो कि मैं आत्मा शांत और शुद्ध स्वरूप में स्थित हो सकता हूं। क्रोध अग्नि पर विजय प्राप्त करो। तो सारे विकार हैं, उन पर हम विजयी बने। और साथ ही साथ जो मैं और मेरापन है, देह अभिमान है, जिसके कारण से व्यर्थ बहुत चलता है। बाबा कहता है व्यर्थ और वेस्टेज, ये लीकेज है। अमृत वेले हमने बहुत अच्छा योग किया, बाबा से शक्तियां प्राप्त की, लेकिन फिर किसी भी बात के ऊपर व्यर्थ चिंतन चला तो क्या हुआ? शक्ति लीक हो गई। तो लीकेज को बंद करो। लीकेज को बंद करने के लिए अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करो, और व्यर्थ से मुक्त करने के लिए सहज साधना, और कुछ भी आपके पास ना हो, बाबा की मुरली तो है ना, मुरली तो है ना। बाबा ने कहा समर्थ संकल्पों का खजाना है ही मुरली, बस इस मुरली से प्यार करो। दादियों को देखा, हमारी बड़ी दीदी थी, आप में से किसी ने बड़ी दीदी को जिन्होंने देखा है हाथ ऊंचा करो तो, बहुत थोड़े हैं, क्योंकि 83 में दीदी अव्यक्त हो गई थी। बड़ी दीदी को बाबा की मुरली से इतना प्यार था, दीदी का वाक्य ही था गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। कभी भी दीदी क्लास में पेन डायरी लेकर के आना नहीं भूलती थी, कभी भी नहीं भूलेगी। हम लोग सेवा करते फटाफट क्लास के आगे पहुंचे तब याद आएंगे अरे मेरी पेन डायरी रह गई, फिर लेने के लिए जाएंगे, लेकिन दीदी अपने रूम से बाहर मुरली क्लास में जाए हाथ में पेन डायरी नहीं हो नहीं सकता। केवल पेन डायरी नहीं, कल दादी जानकी जब क्लास करा रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो दादी ने कहा कलम से लिखना कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन कमाल जो कलम से लिखा हुआ है उसको जीवन में धारण करने की है। तो दीदी की जो विशेषता थी ना, इतना अच्छा प्रश्न उत्तर लिखती थी, और मुरली पूरा होने के बाद में दादी दीदी आपस में चिट चैट करते थे, हम लोग सब छोटे छोटे होते थे साथ में खड़े हो जाते थे, वहां बैठते थे इधर आकर के, तो ऐसे लगता था आज बाबा ने ऐसा कुछ बोला क्या, इतने गहरे गहरे प्रश्न निकालती थी। तो मालूम है फिर बैठ करके फिर कहती थी मुट्ठी फेल फेल, सबको फेल करती, इतना बाबा की मुरली से प्यार था, क्योंकि उनका निरंतर समर्थ चिंतन मुरली पर चलता रहता था, तो मुरली को बहुत जल्दी कैच कर लेती थी। हम जब मुरली सुनते हैं तो हम सुनते हैं तब सब अपना अपना परसेंटेज निकालना, 50% सुनते हैं, 60% सुनते हैं, बैठते तो फुल टाइम है लेकिन फुल मुरली सुन नहीं पाते। तो फुल नहीं सुन पाते हैं, तो जब सुनते समय व्यर्थ है तो व्यर्थ खत्म कैसे होगा? तो व्यर्थ को खत्म करने का साधन कौन सा? बाबा की मुरली से प्यार, प्यार, क्योंकि प्यार में वो ताकत है जो सब कुछ भुला देता है। इन दादियों को कभी भी मुरली के बिना नहीं चलेगा, रात को पड़ेगी, दिन को पड़ेगी, सुबह को पड़ेगी। अब अगर देखा जाए तो एंजल हैं, दादी जानकी एंजल के स्टेज में है, दादी गुलजार को देखो तो भी मुरली पड़ती है इतना प्यार से, पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन मुरली से प्यार है, उसके बिना रह नहीं सकते। तो हम भी हर चीज की जो बाबा ने युक्ति और विधि बताई है उस विधि को प्रैक्टिकल में लाएं, सुबह एक बार सुन लिया और डायरी बंद किया, दूसरे दिन क्लास में गए तब हमने डायरी खोला और मालूम हम क्या गौरव लेते हैं, बहन जी मैं एक दिन भी क्लास मिस नहीं करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्लास नहीं मिस करना ये भी एक हमारे रिकॉर्ड है। क्लास भले नहीं मिस करता हूँ लेकिन महावाक्य तो मिस कर देता हूँ, वो तो मिस हुए ना। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, दूसरा व्यर्थ से मुक्त होने के लिए क्या करेंगे? मुरली से प्यार। कभी ये कारण नहीं देंगे, इस कारण से मैं मुरली नहीं सुन सकता हूँ या नहीं चिंतन कर सकता हूँ। जब हमारी ये धारणाएं मजबूत बनेंगी, ये जीवन में दिव्यता और पवित्रता आएगी, तब हमारे संकल्पों में वो शक्ति होगी। एक स्थान पर बैठ करके आत्मा अपने निज स्वरूप में, बाबा का शब्द है निज स्वरूप। निज स्वरूप क्या है? ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति, इनका पुंज। जैसे पानी की बूंद में कहते हैं ना सातों रंग समाये हुए हैं, ऐसे ये सातों शक्तियां, ये सातों गुण आत्मा महसूस करे, मैं ये हूं। और जब हम ये महसूस करते हैं, ये हुई हमारी निराकार स्थिति, हम डिटैच हैं, निज स्वरूप में स्थित हैं। और निज स्वरूप में स्थित होकर के जब हम बाबा के साथ संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि बाबा भी निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार हूं, निराकार के साथ निज स्वरूप में स्थित हूं, तब हम सहज बाबा के समीपता का अनुभव करते हैं। बाबा में समाई हुई अपने आप को महसूस करते हैं, बाबा की गुण और शक्तियों का आत्मा खूब गहरा अनुभव करती है। यह है प्राप्ति स्वरूप की स्थिति, आत्मा समाई हुई है, आत्मा उसमें खोई हुई है, जिसको साकार मुरली के अंदर बाबा बहुत सहज शब्दों में रोज और बार बार कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझकर जब बाप को याद करेंगे तब ही आपके विकर्म विनाश होंगे। एक मुरली में कितना बारी सुनते होंगे? कई बार बाबा कहता है। क्यों बाबा कई बार कहता है? क्योंकि अभी तक हमने इस अभ्यास को पक्का नहीं किया है, इसलिए बार बार बाबा ये याद दिलाता है। तो इस स्थिति से हमारे विकर्म विनाश होंगे और आत्मा शक्तियों का पुंज बन जाएगी। वो पुंज अर्थात उस मूल स्थिति में स्थित होकर वो वाइब्रेशन प्रकृति के पांचों तत्वों में भी परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उसमें शक्ति है, नेगेटिविटी नहीं है। आप जिसके लिए सोचेंगे वो संकल्प उस तक पहुंचेगा। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। और आपको भी महसूस होगा, उस सामने वाले को भी महसूस होगा। इन संकल्पों को, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। स्थिति बहुत ऊंची है, ये एक साधारण बात संकल्पों की है। कहते एक बार एक राजा और एक व्यापारी था, उन दोनों की आपस में बहुत मित्रता थी। हर रोज दोनों आपस में मिलते थे। एक दिन, और ये जो व्यापारी था वो चंदन का व्यापारी था, तो वो अपने स्टॉक में गया तो देखा बहुत चंदन की लकड़ी इकट्ठी हो गई थी, बिकती नहीं थी। तो उसको संकल्प आया कि ये राजा मर जाए तो उसकी चिता किससे बनेगी? चंदन की लकड़ी की बनेगी ना, राजा को तो उस लकड़ी पर जलाएंगे नहीं, तो ये सारी लकड़ी मेरी बिक जाएगी। सिर्फ संकल्प आया। उधर उस राजा को उसके लिए नफरत आई, तो जब इसको ये संकल्प आया, ये मिलने के लिए नहीं गया। राजा भी उसको नहीं मिला। दो दिन हुआ, तीन दिन, चार दिन, संकल्पों से संकल्प टकराते रहे। एक दिन राजा को विचार आया किसको बुलाऊं तो सही, तो उसने आकर के बुलाया, उसने बुलाया। व्यापारी जब राजा को मिलने गया तो राजा ने उसको सामने से कहा कि तीन चार दिन से मुझे तुम्हारे लिए बड़े खराब संकल्प आ रहे हैं, नफरत आ रही है तुम्हारे लिए। ऐसा क्यों? जबकि हम दोनों आपस में मिले बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। फिर इस व्यापारी ने जवाब दिया कि उसका दोषी राजन आप नहीं हो, उसका दोषी मैं हूं, क्योंकि मुझे ये संकल्प आया कि राजा मर जाए तो ये मेरे सारी लकड़ी बिक जाए। दोनों बड़े प्यार से गले मिले। उसके बाद राजा ने भले मरा नहीं, लेकिन उसकी लकड़ी खरीद ली, क्योंकि उसको पैसा चाहिए था। और दोनों की जैसे मित्रता थी, ऐसे मित्रता चली। तो वार्ता तो बड़ी सहज है, लेकिन संदेश कितना गहरा है। हमारे संकल्प सामने में पहुंचते हैं, जो भी आप चलाते हैं। हमें जो मनसा सेवा करनी है, बहुत बड़ा परिवर्तन करना है, उस परिवर्तन के लिए हमारे संकल्पों की इतनी एकाग्रता भी हो, संकल्प इतने शक्तिशाली भी हो, और संकल्प इतने पवित्र शुद्ध हो, तब हमारे संकल्प किसी तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि बाबा कहता है, अब जो समय परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के समय में आप लोगों को वाणी से ज्ञान नहीं सुना सकेंगे, और सुनकर के भी वो आत्माएं नहीं। अभी आजकल आप देखो, सेंटर्स पर भी जो आत्माएं आती हैं, इवन अपने स्टूडेंट्स भी जो नए नए हैं, आप बाबा को बोलो ना मेरा योग लगे, आप ऐसी दृष्टि दो ना मैं बाबा को याद करने लगूं। दुनिया वाले तो हैं ही भिखारी, वो तो चाहते ही वो हैं कि आप ऐसा कुछ कर दो। अभी एक ऑफिसर को मिली थी, इतना अच्छा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था। प्रोग्राम के लिए उसको बुलाया था, फिर भोजन से उठा, बोला मुझे दीदी एक बात करनी है आपसे। तो पर बोला इधर सिटिंग रूम में बैठे हम। मैंने कहा चलो। वहां करके बैठा तो कहता है, सच्ची बात दिल की सुनाऊं, मेरे में डिप्रेशन है, डिप्रेशन की दवा खा रहा हूं। डिसीजन लेता हूं सीट पर बैठ करके तो भय लगता है, गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं उसको बोला ऐसे राजयोग, बोला नहीं मेरा योग नहीं लगता है, आप कुछ कर दो, आप कुछ कर दो। अब ये समय आ गया जबकि वो कुछ नहीं कर सकेंगे, इतनी तमो प्रधानता होगी। लेकिन हमारी सामने में इतनी सतो प्रधानता हो तो बाबा इस स्थिति के लिए, इस स्टेज के लिए हमें तैयार कर रहा है। हम दृष्टि से उनकी मनोभावना को पूर्ण कर सके। तो ये जो स्थिति है निराकार स्थिति, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, इस स्थिति का भी हमें बड़ा गहरा और लंबे काल का अभ्यास चाहिए, तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं। ऐसी जिसको बाबा अग्नि कहता है, जिसको बाबा ज्वाला कहता है कि अब तुम्हारा ज्वाला स्वरूप का योग हो। ज्वाला स्वरूप को शाब्दिक रीति से हमने समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल ज्वाला स्वरूप बाबा कहते नहीं, ज्वाला में भस्म होने के बाद स्वरूप बदल जाए। कहां स्वरूप बदला? ये नैन बदले, कान बदले, मुख बदला? नहीं, बदल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार और जीत दोनों चल रही है, लेकिन हार नहीं, विजयी। हर परिस्थिति में विजयी, हर वार में विजयी, तब ये विजय का बल इस मनसा सेवा के योग्य बनाएगा। जो हम सोचेंगे, एक मुरली पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते अव्यक्त थी, बाबा ने उसमें कहा था बच्चे अभी विहंग मार्ग की सेवा करनी है। तो अब तक तो हम विहंग मार्ग की सेवा समझते थे, चलो कॉन्फ्रेंसेज हुई उसके बाद विंग्स निकले, एक के बाद एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ये विहंग मार्ग की सेवा है। सेवाएं चल रही ना बड़े बड़े, पहले तो 500 लोग आते थे, फिर 5000 आने लगे, अभी तो लाखों के प्रोग्राम हमने कर लिए। लेकिन बाबा ने उसके अंदर कहा विहंग मार्ग की सर्विस है सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। तो सोच फट से कर्म में कब आएगा? जब हमने ज्ञान गुण शक्तियों को फट से कर्म में लाया होगा, फिर उस स्टेज पर स्थित होकर के, ये सारी धारणाएं हैं हमारी, और उस स्वरूप में बैठते हैं, तब ऑटोमेटिक आपको ये महसूस होगा बाबा की वो शक्तियां जिसमें मैं और बाबा समाये हुए हैं, मेरेपन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मैं बाबा से ले रहा हूं, लेकर दे रहा हूं नहीं होगा, क्योंकि लेने और देने का जो संकल्प है वो है आकारी स्वरूप तक। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, वतन में हूं, बाबा से ले रहा हूं, दे रहा हूं, लेकिन निज स्वरूप में स्थित होने के बाद में लेने और देने का संकल्प समाप्त होकर के ये महसूस होता है मैं इसमें समाया हुआ हूं, ऑटोमेटिक वो शक्तियां चारों तरफ फैल रही हैं। और उस स्टेज में हमारे जो भक्त हैं उन भक्तों को ऑटोमेटिक साक्षात्कार होगा। बाबा कराने वाला है ना, मैं इंस्ट्रूमेंट रेडी हूं, बिल्कुल उस स्थिति में हूं, उसको बाबा यूज कर रहा है। भाग्य हमारा बनाना है, इसलिए बाबा हमें बीच में रखता है। बाकी बाबा नहीं कहता है, हर एक जिस भी देवी देवता का साक्षात्कार होता है वो कराने वाला तो मैं हूं, लेकिन स्वरूप जब ही बन जाता है तब बाबा उसको यूज कर लेता है और उसका रिटर्न हमारे खाते में जाता है। लौकिक में भी हमारी कई माताएं जब सेंटर पर बच्चों को लेकर के आती हैं तब उसके हाथ से बाबा की भंडारी में पैसा डलवाती है, बच्चे से डलवाती है, किस लिए? इसका भाग्य बने। बाकी ये तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, कमाने वाला कौन है, लेकिन बच्चे के हाथ से डलवाती, उसको निमित्त बनाते हैं। ऐसे ही करण करावनहार देने वाला दाता वो है। लेकिन निमित्त बाबा किसको बनाता है? हमें बनाता है। उस स्टेज में वो हमारी मास्टर दाता की स्थिति, जिससे हम विश्व की आत्माओं को देते हैं, उसमें प्रकृति के पांचों तत्वों को हम सत्व प्रदान करते हैं। बाकी शुद्ध संकल्पों का दान, एक स्टेज वो भी जिसमें हम शुद्ध संकल्प देते हैं, संकल्प देते हैं, लेकिन ये स्वरूप है जिससे भावनाएं और मनोकामनाएं सामने वाली आत्मा की पूर्ण होती है। नहीं, भगवान से मांगते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, वो उनकी पूर्ण होती है। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए 20 नाखून का जोर लगाकर हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रेडी हैं? गुवाहाटी निवासी रेडी हैं? तो फिर से हम आए इनके लिए। अगर आप रेडी हैं तो एक ही संकल्प करेंगे कि अपने अमृत वेले को मुझे शक्तिशाली बनाना है। अमृत वेला योग करना है, हम योग करते हैं? नहीं, बाबा की श्रीमत प्रमाण हम अमृत वेला शक्तिशाली स्थिति में संपन्न करते हैं। अमृत वेला करने में पास है? हाथ खड़ा करेंगे जो अमृत वेला करते? सब करते हैं, मेजोरिटी। जैसे बाबा कहता है वैसे कौन कौन करते हैं? वो कभी कभी करते हैं, कम करते हैं। अब हम बाबा के बच्चों को, क्योंकि ये हमारे बाबा की पहली आज्ञा है, ये हमारा धर्म और कर्म है, उठते ही हमें कौन याद आए? बाबा याद आए। इस पहली बाबा की आज्ञा में हमें अपने को कमजोर नहीं रखना है। हमारी मूल कमजोरी यहां पर है। मैजोरिटी अभी भी देखो, अमृत वेले जब शांतिवन में योग चलता है, बैठे हुए बहुत होते लेकिन बैठे होते हैं, साधारण स्थिति में बैठे हैं, कोई टाइम को देख रहा है, टाइम हो और उठे, कोई झुटका खा रहा है, कोई अलवेला बैठा है। अब हमें ये एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, प्राण जाए वचन ना जाए। कौन सा वचन? हमें अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना है। अमृत वेला बाबा ने बच्चों के लिए स्पेशल टाइम दिया है, है ना, स्पेशल टाइम। और उस स्पेशल टाइम पर बाबा बहुत प्यार से बच्चों से मुलाकात करता है। बाबा आया वरदान देने के लिए, आपने मुझे बुलाया, मैं आऊं, आप ये दरवाजा बंद कर दो, कैसा लगेगा मुझे? बाबा ने बच्चों को बुलाया, बाबा बच्चों के पास आया। हम कहते बस बाबा, मैं आत्मा शक्ति का, प्रेम का अनुभव कर रही हूं। बाबा ने शक्ति देना शुरू किया और हमने खिड़कियां बंद कर दी। तो बाबा क्या करेगा? उसको तो देना है जो खिड़कियां खुली है, वो लेंगी। इसको गहराई से सोचो। जो आज बाबा का पहला मुरली का महावाक्य था, क्या सोच रहे हो? आज पहले ही बाबा ने आते क्या कहा, क्या सोच रहे हो? आप ये सोच बनाओ, कैसे भी करके मुझे अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना है। ये आधार, जितनी भी हमारी धारणाएं हैं वो भी मजबूत बनेंगी, और जो मनसा सेवा बाबा हमारे से चाहता है उसको हम सहज कर सकते हैं। क्योंकि अमृत वेला है बाबा से वरदान और शक्तियां लेने का, झोली भरने का समय, और नुमा शाम का समय है देने का समय। लेने के समय लिया नहीं तो देने के समय कैसे देंगे। तो सुबह में दे रहा है, भर रहा हूं, वो महसूस करो। और अपने आप से अभी ये हमें खुद लज्जा आनी चाहिए, आंख मेरी क्यों बंद हो। प्राप्ति का समय है, दाता बैठा है, लुटा रहा है। खुद खुद के साथ में बात करो। मैं कल बहनों को सुना रही थी, थोड़ा दिन पहले ये यीशु दादी के साथ में बैठी हुई थी, तो यीशु दादी बोली, अरे बाबा ने तो हमको इतना पक्का खुली आंख से योग करना सिखाया, ये हमारी चोटी बांध देता था ऊपर में, थोड़ा भी झुटका है तो दिखाई दे ना, कड़वा तेल डलवाता था, तो प्रैक्टिस कराई ना बाबा ने। अब इनको कराई तो फॉलो हमें करना है, हम तैयार हैं। एक संकल्प ले सकते हैं, बस आज की इस बच्ची से एक ही बात पक्की करो कि मैं आत्मा अमृत वेले को सदा शक्तिशाली बनाऊंगा, अमृत वेले को सदा शक्तिशाली बनाऊंगा। ये नैन बाबा को देखते रहे। और मैं आपको अनुभव से कहूं, आप अगर दृढ़ता से प्रतिज्ञा करेंगे ना, माया आएगी, लेकिन नहीं, मुझे इसका चार्ट बहुत अच्छा करना है, बहुत आराम से रात्रि को बाबा को गुड नाइट करके सो, और इस दृढ़ता पूर्ण संकल्प के साथ सो, संकल्प को रात को बुद्धि में दो, सुबह उठते ही फिर से उसी संकल्प के साथ में कि मुझे आज शक्तिशाली पवित्र स्वरूप का अनुभव करना है, मुंह हाथ धुलाई करके गद्दी लेकर बीच में बैठो, सोफे कुर्सी पर नहीं बैठो अगर शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है तो, है तो भी उसके ऊपर जीत पाओ। देखो आप प्यार से, जब आपके लिए, आपको याद के लिए इतनी दृढ़ता होगी ना कि बस मुझे इतना प्यार से बाबा को याद करना है, आप याद का उल्टा शब्द कर दो, याद का उल्टा क्या होगा, उस दयालु को आप पर दया आएगी कि ये बच्चा इतनी दृढ़ता से बैठा हुआ है तो वरदान दे देगा सदा निंद्रा जीत भव का। सच में ये मैं अपने अनुभव से कहती हूं, फिर ये आंख बंद नहीं होगी, दृढ़ता तो चाहिए ना। प्राप्ति कितनी बड़ी है, और सचमुच फिर आपको ऐसा अनुभव होगा, एक घंटा बैठने के बाद में भी आपको नहीं लगेगा कि मैं एक घंटा योग में बैठा हूं, और ये आप आधा घंटा बैठे होंगे ना तो भी आप घड़ी देखेंगे, अच्छा अभी टाइम हो गया, अभी उठना है। और दूसरी बात, उठने के बाद सोना नहीं, नींद करते हैं ना, अभी गुड मॉर्निंग किया, अभी जाकर के गुड नाइट कर दिया। हाँ कोई कारण है, नहीं रेस्ट का टाइम मिलता है कोई कारण से कभी, बाकी दिनचर्या नहीं बनाओ, आप बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे, फिर ऑटोमेटिक बाबा आपसे, आपकी जो मनसा है वो भी शक्तिशाली बन जाएगी, मनोबल भी दृढ़ हो जाएगा। ये मनोबल की दृढ़ता तो है ना, अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना, ये क्या है, तो ऐसा बनाएंगे, करेंगे, जो करेंगे हाथ उठा। थैंक्स, हिम्मत दे बच्चे, मद दे बाबा, और हम तो बाबा की, आप तो इस भूमि पर बैठे हो, जरूर बाबा मदद करेगा, और आप सब उड़ती कला का अनुभव करते हुए बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य में निमित्त बनेंगे, ऐसे दृढ़ के दिल के शुभ भावना और मंगल कामना। ओम शांति।
ओम शांति। सभी ने आपके क्लास से महसूस किया कि मनोबल बढ़ गया है और यही बातों को सदा स्मृति में रखते हुए चिंतन करते हुए मनोबल बढ़ाते हुए मनसा सेवा में काबिल बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाथ की ताली से सब धन्यवाद अदा करेंगे।